نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أميست باي الأسماء الحسنى. اس سیریز میں آج ہم دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت نام العدل. اگر تھوڑی سی بھی گرامر جس کو آتی ہے تو ہونا تو عادل چاہیے، عدیل ہونا چاہیے. عادل فاعل کا وزن اسم فاعل، عدیل فاعل کا وزن اسم فاعل. لیکن یہ سب دو نام چھوڑ کر جس کو پروناؤنس کہہ سکتے ہیں، جو واقعی اصل نام ہے. جیسے مثال ہے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں نا ساجد، عابد، کسی کو اب تو نہیں کہتے نا، یا سجدہ تو نہیں کہتے نا. لیکن یہاں نام العدل ہے، یہ ایک یونیک چیز ہے. جب اس نام کو آپ دیکھتے ہیں اور العدل کہتے ہیں تو ذہن میں صرف ایک لفظ آتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کا لغوی معنی بھی اگر آپ کر لیں تو العدل عین دال لام اس کا روٹ ہے سراسر عدل، سراپا عدل. یعنی کسی کو بہادر کہنے کی بجائے شیر کہہ دیا جائے تو جو فیلنگز آئے گی نا، وہ کسی کو عادل کہنے کی بجائے اس کے العدل کہنے میں آپ کو ملے گی. امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے. سراپا عدل، عادل تو یہ ہے کہ عدل کر رہا ہے، کبھی نہ بھی کرے ممکن ہے نا. عدیل ہے فعیل کے وزن پہ میکسیمم عدل کرتا ہے، لیکن نہ کرے کبھی ممکن ہے نا. لیکن آپ امیجن تو کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ العادل نہیں ہے، العدیل نہیں، العدل ہے. سراسر، سراپا، برابر کرنا، اعتدال کرنا. جس نے بھی سورۃ الاعراف ترجمے سے یاد کی ہے وہ پہلی ہی آیتوں میں پریشان ہو جاتا ہے. میں بھی ہوئی تھی ایک وقت، تھا یا دلون کا لفظ پڑھا تھا، بربیم یا دلون، تو میں کہتی تھی وہ اپنے رب کے ساتھ عدل کرتے ہیں، پھر یہ شرک کیوں کہہ رہے ہیں، اس کے برابر کیوں. پھر سمجھ آیا جب پڑھا اور پھر پڑھایا کہ اصل میں اللہ کے برابر کرنے سے مراد ہے کہ کسی اور کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں. تو بالکل لفظ عدل، عدلا کہتے ہیں ترازو کے ایک پلڑے کو، یعنی ہر پلڑا دو ہی پلڑے ہوتے ہیں، تو ایک پلڑا دوسرے پلڑے کا عدل ہوتا ہے، عدلا بھی کہتے ہیں. مختلف فارمز ہوتی ہیں لفظوں کو بولنے کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ العدل کیسے ہیں؟ سراپا عدل، انصاف، برابر بھی کرنا، اعتدال بھی کرنا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کو جب آپ غور سے دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر اتنی حکمتیں دکھتی ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں کدھر جاؤں. آپ دیکھیے کہ ہم نے لفظ عدل، عدالت کہاں سنا؟ فلموں میں دیکھا ہوگا، عدالت لگی ہوئی ہے اور ایک طرف مجرم اور ایک طرف وہ، ایک مدعی ہے تو ایک وہ ہے جس نے دعویٰ کیا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جب آپ عدل دیکھتے ہیں تو ذہن میں آتی ہے ترازو. آپ دیکھیے ذرا ترازو کو اور امیجینیشن میں لائیے کہ اس ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں ترازو میں تول کر کام نہیں ہو سکتا، اب کیا کریں؟ آپ دیکھیے کہ ہر چیز تو نہیں تکڑی میں تولی جاتی نا، وینگ سکیل کے اوپر ہر چیز نہیں رکھی جاتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ العدل جس جس رنگ میں ہے نا، آپ اس کو جب دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسان کو کتنا مکمل اور خوبصورت بنانا. الذی خلقک فسواک فعدلک، میری فیورٹ آیت ہے سورۃ الانفطار. الذی جس نے خلقک تجھے پیدا کیا، تخلیق کی. الذی خلقک فسواک، پھر تجھے ہموار کیا، سموتھ. اسکن کو ہاتھ لگا کر دیکھیے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور پھر فعدلک، تجھے برابر کیا. یہ جو آپ کے ایک ہاتھ اور دوسرے ہاتھ، ایک انگلی اور دوسری انگلی، اور اسی طرح ایک آنکھ اور دوسری آنکھ کے بیچ میں انچز سے بھی کم کے برابر بھی برابری ہے، یہ العدل کی وجہ سے ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ العدل وہ ہے جس نے میری ایک آنکھ چھوٹی اور ایک بڑی نہیں، بلکہ دونوں اگزیکٹلی برابر بنائیں. سوچیے ذرا، ہمارے ساتھیوں میں ایک سسٹر تھی، ان کے ہسبینڈ کی ایک ٹانگ فیو میں بھی سم ملی سینٹی میٹر، یعنی اتنا چھوٹا کہ ٹراؤزر کے ایک سائڈ صرف تھوڑی سی فیو انچ چھوٹی بڑی کرنی ہوتی تھی. لیکن وہ اس کی وجہ سے سیدھے نہیں کھڑے ہو سکتے تھے، وہ گر جاتے تھے. پھر آپریٹ ہوا، اب کیا کریں؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک پاؤں جو چھوٹا ہے میں بھی سم ملی سینٹی میٹر کچھ بھی، تو اس کو لمبا کیسے کریں؟ تو پھر تو مشکل ہوگی، لمبا کرنے میں مشکل ہے. پھر انہوں نے ان کی دوسری ٹانگ کے پاؤں کے قریب سے تھوڑی سی ہڈی کاٹ کے دوبارہ جوڑی. اللہ اکبر کبیرہ، کبھی سوچتے بھی نہیں، کبھی تصور میں بھی نہیں آیا، کبھی سرما ہی لگائے. ماں اپنے بچے کو لگاتی ہے نا، अब कहाँ लगाती हैं माएँ, पहले ही लगाती थी। तो वो एक लंबी सी डंडी खींच दी और एक ऊंची एक लंबी। आज भी चले आईलाइनर तो लोग लगाते ही हैं ना। बड़ी किस्मत अच्छी होगी आपकी अगर आपकी दोनों आंखों का आईलाइनर एक जैसा लग जाए, कहीं ना कहीं हाथ हिल ही जाएगा। लिपस्टिक लगाते हुए देखिए एक होंठ की शेप पर दूसरी तरफ, तो अलादिल जिसको इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं, वो सरापा या दिल भी है। और इसके मुख्तलिफ एंगल हैं, मसलन चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए क्या अलादिल जाहिर और बातिन की बराबरी, यानी हमारे जाहिर और हमारे बातिन का बहुत बड़ा फ़र्क हमें दिखेगा। अल्लाह सुब्हान तआला के अपने दो नाम पड़े हैं ना, अल जाहिर वल बातिन। अलादिल जाहिर और बातिन को बराबर कर देता है। किस तरह करता है ये सारा अभी हम देखेंगे। सिर्फ अभी आप जज्ब कीजिए इस नाम की खूबसूरती, अपने अंदर लेकर आइए कि अल्लाह सुबहान तआला जाहिर और बातिन की बराबरी कैसे। यानी आप कह सकते हैं डिक्शनरी में अदल किसको कहते हैं कि जाहिर और बातिन में चीज़ एक जैसी हो। दोस्त और दुश्मन के साथ यकसा इंसाफ करना। इसी तरह अदल कहते हैं तकवा के इजहार को। जितना ज्यादा तकवा उतना ज्यादा अदल होगा। और इसी तरह बेलाग और बिला इम्तियाज इंसाफ करना। कोई फेवरेटिज्म नहीं, कोई किसी से रिजेंटमेंट नहीं, किसी से बुग़्ज़ की वजह से आप उसको पीछे कर दें, दूसरे को आगे कर दें, ये नहीं हो सकता। अल्लाह सुबहाना ताला का मामला इतना खूबसूरत है कि अगर आप उसको देखें, एक तारीफ़ इसकी बहुत ही खूबसूरती के साथ आपको अल्लाह ताला के इस नाम की हकीकत सुना देगी। मैं बोलती हूँ, लिखना चाहें तो लिख लीजिए, सिर्फ सुन के भी अगर आपको बात समझ आ जाएगी तो भी बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। और वो क्या है कि अलादिल के असली मानी और लुगवी मानी बराबर करने के हैं। इसी की मुनासबत से जो हुक्काम होते हैं ना, हुक्मरान कह लीजिए, पहले दौर में तो जो हुक्मरान था ना वो ही अदलिया को भी देखता था, इल्ला ये कि किसी को अपने साथ रख ले। लेकिन आज तो अदालत के जज साहब और हैं और हुक्मरान कोई और है ना। लेकिन आप कह लीजिए कि वही शख्स जो लोगों के झगड़ों में, यानी अलादिल के असली और लुग़वी मानी है बराबर करना, इसी की मुनासबत से हुक्काम का लोगों के निज़ाई मुकदमा, निज़ा कहते हैं झगड़े को, यानी झगड़ों के मुकदमात में इंसाफ के साथ फैसला करना अदल कहलाता है। पुराने पाक में आता है वान ताहकुमु बिल अदल, यानी जब भी हुक्म करो फैसला करो तो अदल के साथ करो। इसी लिहाज से फिर लफ्ज़ अदल जो है ना, अफरात और तफरीत, लिखे अफरात और तफरीत के दरमियान एतदाल को कहते हैं। आपने कभी पेंडुलम देखा? आप उसको जरा सा टच करें ना, फिर वो पूरा एक साइड पे ऊपर जाएगा, फिर वापस आके फिर इधर घूमता ही रहता है। जैसे आप एक बॉल या बैलून, छोटे से साइज के बैलून को लेकर रस्सी में बांधे और उसको उछालें, इधर जाएगा उधर जाएगा उधर जाएगा, एंड पे रुकेगा कहाँ आपको पता? मिडल में रुकता है। बिल्कुल इसी तरह एक कोना है अफरात और दूसरा है तफरीत। इसीलिए फिर आयमाए तफसीर जो है वो कहते हैं कि अलअदल, अदल की तफसीर के जाहिर और बातिन की बराबरी, यानी जो कौल या फेल इंसान के जाहरी अज़ा से सरजद हो, बातिन में भी इसका वही एतकाद और हाल हो। ये है जाहिर और बातिन का एक होना। उम्मीद है कि समझ आ रही है आपको। बात यह है और हकीकत भी यही है कि लफ्ज़ अदल अपने आम मानी में है जो इन सब सूरतों को शामिल है। इनमें ना कोई तजाद है ना कोई इख्तलाफ है। तो अल्लाह ताला के नाम के साथ जब आप इस लफ्ज़ को जोड़ते हैं ना, तो फिर आपका क्या अकीदा बनता है? क्या अलादिल वो हस्ती किसी शख्स के साथ बगैर अफरात तफरीत के मामला करता है, वो मामला जिसका वो मुस्तहिक होता है? और अदल और इंसाफ का तराजू ऐसा सही और बराबर हो कि गहरी से गहरी मोहब्बत हो और शदीद से शदीद अदावत हो, फिर भी इसके दोनों पल्लुओं में से कोई एक पल्ला ना झुक सके। यानी या इंसान किसी की मोहब्बत में इंसाफ का दामन छोड़ देता है और या फिर नफरत में। और आपको यहाँ वो जुमला भी याद आ जाना चाहिए एक सहाबी का, जिनको अल्लाह के नबी ने उमाल बनाकर भेजा था खराज लेने। दरख्तों के ऊपर लगे हुए फल का अंदाज़ा लगाना होता था, तो खैबर में यहूद थे, तो अल्लाह के नबी किसी एक को हर साल भेजते, वो अंदाज़ा कर लेते, खर्रास बोलते हैं ऐसे शख्स को स्वाद के साथ। तो वो जाकर देखते हैं कि भाई इतना फल है, उसके हिसाब से फिर उनसे लिया जाता था जो भी मामला लिया जाता है। तो उन लोगों ने कहा कि देखो थोड़ा सा हमसे कुछ आपस में मामला सेट कर लो, तो जितना फल लगा हुआ है ना उससे कम बता दो जाके, यानी हमें कम पैसे देने पड़े। जैसे ऐसे ही है ना कि आज सोने के वजन में कुछ चांदी का कह के तो ज़कात कम कर दो। तो उस वक्त उन्होंने जो जुमले बोले थे वो है असल में यहाँ मुराद, सुनाना भी ये मकसद है। कहा कि मैं जिस हस्ती की तरफ से आया हूँ, मुझे वो दुनिया में सबसे प्यारे हैं, اور تمہاری طرف آیا ہوں، مجھے تم دنیا میں سب سے مبغوض ہو. اچھا مبغوض تھے اور اللہ کے نبی نے بھیجا اور چلے گئے، ہم توڑی کرتے. میں نے نہیں جانا ادھر، آپ کسی اور کو بھیجے، میں نے نہیں یہ کام کرنا. یہ ہماری جو مرضیاں نہیں نا ختم ہوں گی تو اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. تو خیر ان کو پسند ہے نہیں، جو کام ہے وہ کرنا ہے تو کرنا ہے، ان کی مرضی تو چلتا، ہم تو اپنی مرضی اڑیستے ہیں نا. نہیں یہی کریں، آپ کو یہی کرنا، یہی لینا پڑے گا، آپ کچھ نہ کریں. تو خیر کہنے لگے کہ ان کا پیار اور تمہارا بغض مجھے انصاف سے نہیں روک سکتا، یعنی درختوں پہ جتنا پھل لگا ہوا ہے میں اتنے ہی کی بات کروں گا. تو لہٰذا کسی کی محبت اور عداوت کبھی بھی عدل کے پلو کو جھکانے نہ دے. اور جو چیزیں شرن مہلک ہیں، ہلاک کرنے والی، یا کسی درجے میں مضر ہیں یعنی ضرر رساں ہیں، ان سے اپنا بچاؤ کرتے رہنے سے جو ایک خاص نورانی کیفیت انسان کے دل میں راسخ ہوتی ہے نا، اس کا نام ہے تقویٰ. تو عدل اور قسط یعنی دوست اور دشمن کے ساتھ یکساں انصاف کرنا، اور حق کے معاملے میں جذبات محبت عداوت ان سے بالکل مغلوب نہیں ہونا، یہ جب بندے میں عادت آتی ہے نا تو اس سے تقویٰ ملتا ہے. آپ کہہ لیجئے کہ حصول تقویٰ کا سب سے مؤثر ترین اور قریب ترین سبب یہ ہے کہ آپ کسی کی محبت یا کسی کی نفرت میں عدل کو نہ چھوڑیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کون سی ہستی ہے؟ کسی سے افراد تفرید کے بغیر وہ معاملہ کرتا ہے جس کا وہ مستحق ہوتا ہے. اب جب آپ اس طریقے کی باتیں سنتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ایسا عدل و انصاف جس کو کسی کی دوستی یا دشمنی نہ روک سکے، اس کے اختیار کرنے سے انسان پرہیزگار بن جاتا ہے، آسان ہوتا ہے، تو یہ پھر ملتا کہاں سے؟ یاد رکھیے گا، آپ اپنے اندر یہ احساس بڑھانا چاہتے ہیں نا کہ میں اللہ کا تقویٰ اختیار کروں، مجھے اس کے سامنے جانا ہے، تو یاد کر لیجئے قیامت کے دن اس کی جزا اور سزا کو دیکھ لیں. اس کی شان جزا کا خوف بندے کو سیدھا کر دیتا، کیونکہ ان اللہ خبیرم بما تعملون، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. بار بار قرآن پاک میں یہ آیت آتی ہے اور ہم الخبیر پڑھ بھی چکے ہیں کہ اس کو تو ہماری ایک ایک بات خبر ہے. ذرا سوچئے، مثال چلے آپ کے اپنے لیول پہ دے دیتی ہوں، ماں اور بھابھی میں جھگڑا ہو گیا، آپ کس کا ساتھ دیتی ہیں؟ ماں کا، اس لیے کہ ماں ہے، اور بھابھی بیچاری دوسرے گھر سے آئی ہے اس لیے. نہ نہ، دیکھیے ادب، محبت، پیار، عاجزی اپنی جگہ، لیکن جس معاملے میں کسی کے اوپر اگر ذرا سی بھی ناانصافی ہو رہی ہو نا، تو آپ کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا. جب کسی کے دل میں یہ یقین بیٹھ جاتا ہے نا کہ میری کوئی چھپی یا کھلی حرکت اللہ سے چھپ نہیں سکتی، تو پھر اس کا دل خشیت الہی سے لرستا ہے، پھر اس کے بعد سارے معاملات میں عدل اور انصاف سیدھا ہو جائے گا. اب بار بار ہم یہ جملہ سنتے ہیں، عدل انصاف، عدل انصاف، تو سوال یہ ہے کہ عدل اور انصاف میں فرق کیا ہے؟ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ انصاف کرنے کے لیے دو باتیں لازمی ہیں، یعنی زبردست ہونا کہ کوئی اس کے فیصلے سے سرتابی نہ کر سکے، اور حکیم ہو کہ حکمت اور دانائی کے ساتھ پوری جانچ تول کر ٹھیک فیصلہ کرے، کوئی ایسا حکم نہ دے دے جو بے موقع ہو. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ العزیز بھی اور الحکیم بھی ہے. پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے عدل کا نظام قائم کیا ہوا ہے، کچھ کو یہاں سزا مل جاتی، کچھ کو وہاں. مجرم کو قید، کوڑے اور ہاتھ کاٹنے، سنسار کرنے یا سولی پر لٹکانے کی سزا دی جاتی ہے نا، اس لیے کہ یہ سب کچھ اس العدل کے، عدل و انصاف کے تحت ہوتا ہے. اکثر آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور اکثر بیشتر ظالموں کو ایسی سزائیں دیتا ہے کہ مخلوق اگرچہ ان سزاؤں کا احساس نہیں کرتی، مگر وہ خود تو اچھی طرح سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں ہمارے کیے کی سزا مل رہی ہے. کسی کو پتہ لگے نہ لگے، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کسی کا دل توڑ کے آیا ہوں اس لیے ٹھوکر لگی ہے. اللہ نے انسان کے اندر ایک ڈیٹیکٹر رکھا ہوا ہے. بچہ بھی ماں کو ستا کے جائے گا نا تو باہر کوئی تکلیف ہوگی نا، دل میں آئے گا کسی کا دل توڑا ہے آپ نے، اگلی زندگی میں آپ کو دکھ پہنچے، تکلیفیں مستقل ایک پر دوسری، آپ کہتے ہیں نہیں مجھے لگتا ہے اس نے مجھے کوئی بد دعا دی ہے، میں نے اس کو ستایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طریقے سے ضمیر کی آواز کو کھولتا ہے. اور میں اکثر ایک جملہ بول دیتی ہوتی ہوں کہ جو معاملہ کافر کے ساتھ یا غیر بلیور کے ساتھ، ڈس بلیور کے ساتھ، نان بلیور کے ساتھ قیامت کے دن جا کر پیش ہونا ہے نا، مومن کے ساتھ وہ دنیا میں ہی ہو جاتا ہے. کیسے؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ. ایک چھوٹی سی عدالت اللہ نے، علا دل نے، اور علا دل نے بندہ مومن کے دل میں رکھی ہے. سورۃ قیامت پڑھ لیجئے جا کے شروع سے. لا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ جو نفس لوامہ لکھ لیجئے، کہیں نہ کہیں کام آئے گا یہ جملہ. نفس لوامہ ایک چھوٹی عدالت ہے، اسی کی بڑی تصویر قیامت کے دن میدان محشر میں ہوگی. پھر بندہ کبھی کسی کا دل نہیں توڑ سکتا جان بوجھ کر، बल्कि ना भी गलती हो तो माफिया मांगता रहता है, क्योंकि जमीर की खलिश बंदे को सोने थोड़ी देती है। सब इंसान की तारीफें करे, जमीर के चौके लगाता, शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, हो क्या, क्या करके आई हो, क्या करते हो, देखा नहीं, वो नहीं किया। और इस तरह से दिल बहले नहीं बहलता, और इस तरह जब बंदा किसी पे जुल्म करता है ना, तो उसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ आती है। तो जरा से देखते हैं कि अदल और इंसाफ में फर्क क्या है। देखिए दोनों लफ्ज, आइन दाल लाम अदल इदला, और इंसाफ नून स्वादवा नेस्फ नेस्फ नेस्फ। देखिएगा दोनों का तकाबुल आपको एक फ्लो चार्ट में दिखता है। अदल क्या है? तवाजुन और तनासुब के मुताबिक देना। और इंसाफ करना क्या है? यानी आधा आधा दे देना। मैं आपको पहले तो एक इसकी घरेलू सी मिसाल दे देती हूँ। एक बूढ़ा बाप और उसके साथ एक जवान बेटा है, बिल्कुल यंग, हट्टा कट्टा। अब उसने 10-10 किलो के दो घी के डब्बे खरीदे। इंसाफ क्या है कि एक 10 किलो का डब्बा बेटा पकड़े और दूसरा बूढ़ा बाप पकड़े, ये है निस्फ निस्फ। समझ गए होंगे ना, आधा आधा। ऑपोजिट कर लीजिए, बाप जवान है तो बेटा 7-8 साल का, 7 साल का, तो बाप 10 किलो का एक डिब्बा खुद पकड़ ले और एक 10 किलो बेटे को दे, ये इंसाफ होगा। अदल ये नहीं है। अदल क्या है? आप देखिए कि इंसाफ और अदल का फर्क, जिसको आज के दौर में इक्वेलिटी के नाम पे औरत और मर्द को भी बराबर साबित करते हैं ना। आप देख रहे हैं कि एक आम बड़े कद का शख्स है, एक बच्चा है जरा सा बड़ा, और एक बेबी है। अगर आप लेफ्ट साइड वाली पिक्चर पहले देखिए ना, जहाँ इंसाफ लिखा है, नीचे सबके बॉक्सेस बराबर हैं, सबको एक ही साइज के बॉक्सेस दे दिए गए। देखिए बराबरी हो गई ना, मे बी 1.5 फिट है, चलें आप समझ लीजिए 25 इंच के सब। अब हुआ क्या, जो पहले से ही लंबा था वो सबसे ऊपर चला गया, जो बच्चा जरा दरमियाने कद का था वो देखने के काबिल हो गया दीवार के उस पार। तो बेबी के साथ क्या हुआ आपके सामने है। तस्वीर को नीचे से देखें, सब कुछ ठीक 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 ठीक, स्टूल तक ठीक, पाँव सबके ठीक, टांगे ठीक, लेकिन ऊपर से देखिए तो आपको आड़ापन दिख रहा है ना। पहला बच्चा तो देख ही नहीं पा रहा, दूसरा थोड़ा सा देख रहा है, और बाप कुछ ज्यादा ही ऊंचा हो गया। ये है इंसाफ, सबको एक जैसा दे दो। सोशलिज्म इसकी बहुत मुंह बोलती तस्वीर है। जो भी कमाओ लाकर रात को हुकूमत को दो, और हुकूमत सबको बांट दे, अमीर गरीब कोई भी नहीं, सब बराबर। अपनी मौत आप मर गए, इस्लाम ने ऐसा कभी नहीं किया। इस्लाम इस दुनिया में किसी को ज्यादा देता है, किसी को कम देता है, ताकि हर एक फिर अपने इस दिए और ना होने वाले पे सब्र और शुक्र करे। अब दूसरी तरफ देखिए, तीन ही स्टूल थे ना। देखा जाए तो पहली सूरत जिसको बाप कह सकते हैं, उसको स्टूल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्टूल के बगैर भी उस तरफ देख पा रहे हैं जो खेल हो रहा है। अब जो दूसरा बच्चा था जरा बड़ा, उसको एक स्टूल की जरूरत थी, तो बाप ने क्या किया, दो स्टूल बेटे को दे दिए, बेबी को। नतीजा देखिए, इस तस्वीर को अब नीचे से नहीं देखिए अदल वाली को, इसको ऊपर से देखिए, सब बराबर का देख रहे हैं। अल्लाह सुब्हान तआला अदल है। लोग इंसाफ की बात करते हैं, इंसाफ तो बहुत आसान है, असल चीज अदल है, और कुरान इस पे बार 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 बात करता है। तो अल्लाह ताला अदल की सूरत में इंसाफ करता भी है और अदल भी करता है, एक ही वक्त में दोनों चीजों को लेके चलना ये कोई आसान नहीं है। याद रखिए कि इंसाफ के लिए दो बातें जरूरी हैं, जबरदस्त होना कि कोई इसके फैसले से तरदाबी ना कर सके, जैसे कि आपको बता दिया। अगर आप जबरदस्ती नहीं है तो आपका फैसला मानेगा कौन? आपके फैसले बच्चे ना माने, वो बच्चे बाप से नहीं डरते तो पहाड़ों से क्या डरेंगे। तो जबरदस्त होना, अलअदल लफ्ज के अंदर अल्लाह का लजीज होना छुपा हुआ, ये बताना चाह रही हूँ। और इसी तरह दूसरी शर्त क्या थी, कि हकीम और दाना हो, ताकि जांच तोल कर ठीक ठीक दे। तो आप लिखिए अल्लाह सुब्हान तआला के इस नाम अलअदल में उसके दो और नाम छुपे हुए हैं, अल अजीज और अल हकीम। नहीं समझ आया किसी को तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसको समझ आ गया वो तो कहेगा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अल अजीम, कि अल्लाह सुब्हान तआला हक वालों को तोल तोल के उनका हक देता है। और याद रखिए, इस पूरी दुनिया में अलअदल का जबरदस्त निज़ाम अदल कायम है। हम इधर देखें उधर देखें किधर देखें, कैसे अदल कायम है? कुछ लोग कहते हैं सबको मुख्तलिफ क्यों पैदा किया, कोई गरीब ही गरीब है, कोई अमीर क्यों है? तो लिखिए, कुछ को यहाँ सजा मिली, कुछ को वहां मिली, तो अदल हो गया ना। मसलन छोटी सी मिसाल लीजिए, एक शख्स, बल्कि किसी ने सवाल किया था आप में से ही, शायद किसी बच्चे का जिन में आ रहा है, कि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं दुआ भी मांगता हूँ, पर मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मेरे नंबर थोड़े क्यों आते हैं, और मेरा दोस्त तो ये कुछ नहीं भी करता तो उसके नंबर ज्यादा क्यों आते हैं। अब ये इतना मुबहम सवाल था कि माँ घबरा गई और उन्होंने मुझे बचा दिया कि भाई आप बताइए इस बच्चे को मैं क्या जवाब दूँ। आप भी सोच के परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया। तो जवाब लिख लीजिए, आपके सामने है जवाब। किसी को यहाँ किसी को वहाँ। पहली बात यह है कि ये दुनिया दारुल जजा नहीं है, ये दारुल इम्तिहान है। और इम्तिहान में जिसको जितना आगे लेके जाना होता है उतना उसको मुश्किल पेपर देना पड़ता है। बड़ी जमात का बंदा ज़्यादा सवाल हल करता है और जो छोटी जमात में होता है वो थोड़े सवाल हल करता है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये चीज़ आपके मेरे जहन में रासिख हो जानी चाहिए कि अल्लाह सुबहान तआला किस तरीके से कुछ का मामला इधर दूसरी तरह से कर देगा, कुछ का दूसरी तरह करेगा। फिर इस तरह आप देखिए, कुछ को फौरी पकड़ हो जाती है और किसी को कम। एक बहुत ही पुरानी सी मारूफ बात याद आ गई कि एक अफसर था, बड़ा ईमानदार था और कभी रिश्वत नहीं लेता था, और उसकी अच्छी साख थी। फिर शायद बेटी की शादी थी या क्या थी या कुछ था, तो बीवी ने भी जोर किया कि पैसे चाहिए, ये है वो है। तो उसने बस पहली ही दफ़ा रिश्वत लेना चाही, और जो ही उसने रिश्वत ली ना तो कंट्रोल हो गया। आई डोंट नो इतना क्विक कंट्रोल होता कैसे है। बहरहाल तो वो पकड़ा गया, जेल में चला गया, या उसको सजा देनी थी। तो उसने कहा, जो उसके जुमले थे ना वो हैं असल में आपको इस वक्त अलअदल की रूह समझाने के लिए। उसने कहा कि मुझे नहीं समझ आता कि यहाँ लोग कैसे रिश्वत लेते हैं, मैं तो पहली ही बार में पकड़ा गया। ये है कुछ को फौरन सजा देना, कुछ को मोहलत दे देना। अब जरा बिल्कुल सारी चीजें छोड़ के ना बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे और एक मिसाल देने लगी हूँ। जिसको आज ये समझ आ गई वो अल्लाह दिल को बिल्कुल अपने करीब पाएगा। बाहर ऐसे लगता है जिसको फौरन सजा मिली है ना उसकी पकड़ ज्यादा हुई है, लेकिन असल में जिसको फौरन नहीं मिलती ना उसकी चार्जशीट लंबी हो रही होती है। कैसे? मिसाल लेते हैं हम, फिर ख्वातीन है तो घरेलू मिसाल अच्छी लगती है। आपके घर में एक औरत काम की नीयत से आती है, मासी आपको चाहिए थी, बहुत दिन से आप ढूंढ रहे थे, किसी ने कहा फलां है, किसी तरह से वो एक खातून आ गई, आपसे भावताव करके आपने उसको कहा ठीक है। अब आप कहते हैं कि चूंकि नई नई मासी है तो चलो मैं इसको थोड़ा सा आजमा लूँ, कहीं चोरी तो नहीं करती, क्योंकि घर में तो हर चीज़ खुली पड़ी है। आप क्या करते हैं, 50 रुपए का नोट कहीं ऐसी जगह डाल देते हैं कि जहाँ से वो गुजरे और सफाई करे, और आप बस उसको देखते रहते हैं। तो वही हुआ जो आपको डर था, 50 का नोट वो उठा के जेब में डाल के ले गई। अब एक सूरत ये थी कि जो ही वो 50 का नोट ले, आप उसको देख रहे थे, आप उसके कान से पकड़े, इधर आओ जरा, किधर गए, इधर लाओ, ये करो वो, और उसको कान से पकड़ के जो खबरदार चली जाओ मेरे घर से, मैं तो तुम्हें आजमा रही थी, तुमने तो चोरी की है तो मैं तो तुम्हें नहीं रखूंगी। और इस तरह उसकी फिर सारी चीजें थी जॉब खत्म होती। अगर बिलफर्ज ऐसा ही होता तो वो खातून क्या कहती, हाय मेरी फूटी किस्मत, जॉब भी मिली और छिन गई। अच्छा ये भी एक सिनेरियो आ गया, आप दूसरे पे चलिए। आप उसको 50 का नोट ले जाने दें, कल फिर आएगी, आप सफाई करने दीजिए, उसको कुछ फील ना कराए। आप कहीं भी चुपके से 100 का नोट डाल देते हैं और आज वो भी ले गई, आप तो आदत ही हो गई। आप कहते हैं अच्छा जी ठीक है। तीसरी दिन को ही आप कहीं 500 का नोट भी रख देते हैं, वो दिल में क्या सोचती है, कितनी अच्छी बाजी मिली है, एक तो तनख्वाह चलो जो दी लेकिन ऊपर से तो रोज मुझे पैसे मिल रहे हैं। लेकिन जब आप चौथे दिन पूरी प्लानिंग के साथ 1,000 का नोट रखें और जब वो उठाने लगे एन उसी वक्त आप दरवाज़ा खोल के अंदर आए और साथ पुलिस को बुला लें, तो आप क्या कहेंगे, 1,000 तो नहीं, ऐसे नहीं आप कहेंगे, आप कहेंगे आज के ये 1,000, कल के 500, उसके बाद 200, 100, सब पैसे दे दो और पुलिस को कहेंगे इसको ले जाओ। ये है, आप जुमला देखिए, कुछ को फौरन सजा देता है, कुछ को मोहलत देता है। क्या मोहलत अच्छी है? ऐसी मोहलत किस काम की कि जिसके बाद इतनी बड़ी पकड़ हो जाए कि इंसान की जॉब चली जाए, इंसान बंदगी के मुकाम से उतर जाए। और अल्लाह सुबहान तआला को ये करना आता है। आज दुनिया में भी फलम्मा नसूमा जुक्किरु बिही, सूरत अलअनाम में अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं जब वो भूल गए उस नसीहत को जो उनको की गई थी, तो हम उन पर लफतहना लहिम अबवाबा कुल्ली शयइन, हर चीज़ के नेमतों के दरवाजे खोल देते हैं। लेकिन जब फिर बाद में पकड़ते हैं तो फिर वो मायूस हो जाते हैं। और याद रखिए कि दिल की खलश भी रहमत है और अजाब भी है। रहमत कैसे है कि इसके बाद बंदा तौबा कर लेता है, मैंने गलत किया। और अगर इंसान अपनी आवाज़ को या नफ्से लवामा को ना सुने तो नफ्से हमारा ही बनता रहे, तो ये अजाब है, जीने नहीं देती। बड़े बड़े क्राइम करने वाले बड़े बड़े इंसान जो है ना, वो आप देखिए कि अजीबो गरीब हरकतें करते हैं। किसी ऐसी लड़की जिसकी शादी हुई वो मर्द अच्छा नहीं निकला, शराब पीता था, ये वो, फिर बहरहाल जो भी हुआ अल्लाह सब पे रहम करे, तो उसके मुँह से ये बात सुनी थी, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फर्स्ट हैंड बात है। उसने कहा कि जब ये लोग शराब पी लेते हैं ना, उस वक्त तो पीते हैं, फिर नशे में धुत घर आते हैं, और फिर उसके बाद ये रोते हैं, फिर ये नोहा करते हैं, मरसिया पढ़ते हैं। जैसे कोई रोता है ना, कहती इनकी जो रोने की आवाज़ है ना, वो बर्दाश्त नहीं होती। क्यों भला? क्या वो नशा उतरना है या जो भी है, गुनाह कर लिया अब तो आना है। अब इसको किसी पे भी ले लीजिए, जब वो शराब के नशे में धुत गटर में मुंह रख ले, टॉयलेट में मुंह रखे, सड़क पे गिरे पड़े नहीं दिखते आपको, तो क्या ये अजाब नहीं है? ये अंदर का कुलक है। और किसी ने तो ये भी कहा था कि तेज म्यूजिक लोग अंदर की चीखों को दबाने के लिए सुनते हैं। तो यहाँ तक अगर आप देखें तो अलैदल का एक बड़ा खूबसूरत सा मामला में समझ आ गया कि अल्लाह सुबहान तआला इंसानों को उनके मामलात के साथ देखता है। अब हम चलते हैं लफ्ज़ अलैदल को एतदाल की सूरत में। इंसानी जिस्म खूबसूरत एतदाल की मिसाल है। अल्लाह सुबहान तआला ने हर चीज़ वहाँ लगाई जहाँ होनी चाहिए थी। मसलन आप देखिए कि हमारे मुख्तलिफ अज़ा है ना, हाथ, पाँव, आँख, बल्कि आँखें, नाक, कान, वो इन अज़ा के पैदा करने में जवाद है, सखी है, और इनको सही मुकाम पर रखने में अलदल है। मसलन आप देखिए कि आँख को ऐसे मुकाम पर रखा जो इसके लिए बदन में तमाम मुकाम की बनिस्बत ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि अगर इसको गुद्दी पर, यानी ये माथे पे, या पाँव पर, या हाथ या खोपड़ी पर बनाया होता तो जिस कदर इसके नुकसान का अंदेशा था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी तरह से आप देखिए कि उसने हाथों को कंधों से मुअल्लक किया हुआ है, पीछे से हाथ जोड़ दिए, आगे से खुले हैं। अगर इनको सर के साथ या फिर हमारे हिप्स के साथ या घुटनों पर लगा दिया जाता तो क्या हम इन हाथों से फायदा उठा सकते थे? नहीं उठा सकते थे ना। किसने अल्लाह ताला को ये बात बताई होगी कि हाथ इधर, कान इधर? बच्चे की माँ के पेट की जो मुख्तलिफ तस्वीरें हैं, अगर आप देखें तो डर जाए। दुम भी होती है, कभी लंबी सी थोथनी होती है, बाद में इतनी प्यारी सी शक्ल बन के बाहर आ जाता है। इसी तरह आप देखिए कि तमाम ख्वास हमारे एक सर की खोपड़ी के अंदर अल्लाह सुबहाना तआला ने भर दी है, क्योंकि वो जासूस है। इनका तमाम बदन से बुलंद मुकाम पर होना लाजमी था। अगर हमारा सर या खोपड़ी या दिमाग पाँव पे रखा होता तो पूरा निज़ाम बिगड़ जाता। और आप देखिए कि हर जिस्म की उसकी तफसील की जाए, इतनी लंबी कहानी हो जाए कि आप सुन ना सकें, तो आप कह सकते हैं कि अल्लाह दिल ने एतदाल के साथ हमारे जिस्म में हर चीज़ को मुनासिब से मुनासिब तौर पे पैदा किया। दाएं या बाएं, ऊपर या नीचे, इधर उधर, ज़रा सी मिसप्लेस हो, नाकिस हो जाती है, बातिल हो जाती, ख़राब होती, या फिर बदनुमा लगती, गैर मुतनासिब होती। नाक को चेहरे के वस्त में पैदा किया है, अगर इसको माथे में एक रुखसार में बनाया होता तो इसके जो फवायद है वो हम नहीं ले सकते थे ना। तो ये बातें क्या बताती कि इंसानी जिस्म एक जामे और बेनक्स बनावट और तेजी के साथ बसहूलत हरकत में आ सकता है, ये अल्लाह सुबहान तआला की हस्ती है। अब जरा सा ये तसव्वुर में लाए कि अगर हर चीज इस कदर जामे और बेनक्स ना होती और पूरी टांग में एक ही लंबी सी हड्डी होती तो पाँव मोड़ते कैसे? चलना मुश्किल हो जाता, रुकना मुश्किल होता। किसी सिस्टर ने मुझे पिक्चर दिखाई कि उनकी मदर की नी का ऑपरेशन हुआ है, 42 स्टिचेस। मैं तो देखा तो मेरी तो चीख ही निकल गई, जैसे स्टेपलर के साथ स्टेपल करते हैं ना। और टांग कैसे मुड़ेगी? अभी तो टांग के हैं, पता नहीं कब तक वो टांग मुड़ेंगी। सोचिए अगर ये घुटने की हड्डी होती ना तो क्या होता? आज भी जिनके घुटने दर्द करते हैं, अल्लाह उनको आफियत दे, अल्लाह सब बीमारों को और दर्दों वालों को ठीक कर दे, जीना दोबर है। जिस्म भारी और बद्धे हो जाएं, सुस्त हो जाते हैं, फुर्ती खत्म हो जाती, बैठना मुश्किल हो जाता। जब एक टांग पर बोझ पड़ता है तो वो बहुत जल्दी टूट जाती। अल्लाह ने आपको मुझे क्या खूबसूरत तरीके से बना कर दिया, कभी इस पे गौर करें तो बोलिए अल्लाह दिल तेरा बहुत शुक्रिया। और जहाँ बोझ पड़ना था वहाँ दो दो टांगे दे दी, दो पाँव दे दिए, एक टांग पे खड़ा किया जाता, पता नहीं क्या हाल होता। तो अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक। और आप देखेंगे कि जितना हमारे इस जिस्म के अंदर ये सारा कुछ चल रहा है ना, अगर इस सब को बाहर करके किया जाए तो कई फैक्ट्रियों का काम है। ये 5-6 फुट के जिस्म में अल्लाह ताला ने रख दिया नाक को उसकी जगह पे, कान को, हाथ को, बाजू को, और फिर सब चीज़ें वर्किंग भी हैं। हम तो कहते हैं जगह छोटी है, काम नहीं हो रहा, हमसे नहीं होता, इतने छोटी जगह पे खाना नहीं पकता, किचन बहुत छोटा है। कैसे इंसानी जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को देखें, फिर आप देखिए कि बसारत, आप अपनी आंख को देखें तो हैरान हो जाए कितना कठिन निज़ाम है। समात का निज़ाम देखिए, बोलने के लिए दिमाग, मुंह, जुबान के अलावा बहुत से असाब भी काम करते हैं। एक दफा मुस्कुराने में आपको पता है 52 मसल्स काम करते हैं, चलने के लिए पांव, टांगों के लिए 54 मसल्स काम करते हैं। आप मैं तो ये फिगर्स गिन सुन पढ़ नहीं सकते, अल्लाह ने तो ये सारा कुछ करके दिया। तो क्या पता चला कि अल्लाह सुभान ताला ने इंसान को जिस्म ऐसा दिया कि छोटी छोटी चीजें। फिर आप मजे की बात देखिए कि अल्लाह अदल का अजाए इंसानी में अदल कितना है कि सारे अजा मिलकर काम करते हैं। हम तो दो लोग मिलके काम नहीं कर पाते, अल्लाह की पनाह, हमारी वेवलेंथ नहीं मिलती, हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती, वो टाइमिंग नहीं सेट होती, हमारा मिजाज नहीं मिलता, हमारी मसरूफियात नहीं मिलती। जबकि हम दिन रात में कितने काम करते हैं अपने जिस्म में, जरा देखिए, सांस लेना, मुस्कुराना, क्या ये इत्तेफाक है? आपका जिस्म अगर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट ना करे, हारमनी ना हो, तो याद रखिए कि आप मुस्कुरा भी नहीं सकते। सांस लेना तो दूर की बात है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, अल्लाह ताला ने इस तरीके से रखा हुआ है। फिर आप देखिए, हम खा भी रहे होते हैं, सांस भी ले रहे होते हैं, सुभान अल्लाह, इत्तफाक में बरकत है। टीम वर्क इज ड्रीम वर्क। अल्लाह ताला ने कैसे खूबसूरत तरीके से इन चीज़ों को जोड़कर बता दिया कि थोड़ी सी चीज़, छोटी सी जगह, थोड़े से रिसोर्सेज से भी बहुत काम हो जाता है जब चीज़ें टीम वर्क और मास्टरमाइंड के साथ चलती हैं। और अगर काम ना करना हो तो बड़ी बड़ी चीज़ें बेकार हो जाती हैं।